झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे।
ओम शांति। आज के इस रात्रि क्लास में हम आदरणीय मोहन भाई जी का एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय मोहन भाई जी का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है कि बहुत छोटी आयु में बाबा का हाथ पकड़ा आपने, और मम्मा बाबा की पालना का सौभाग्य आपको मिला है। आप ओएनजीसी में जियोलॉजिस्ट के रूप में जॉब करते थे, उसे पूरा कर अर्ली रिटायरमेंट लेकर के लगभग 35 से भी अधिक वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंजीनियर साइंटिस्ट विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं, और हम सबका ये भाग्य है कल से इंजीनियर साइंटिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, लेकिन आप सबका स्नेह उन्हें यहाँ खींच कर ले आया है, और आज आप हम सबको निमित्त और निर्माण भाव से जमा का खाता बढ़ाने की विधि पर मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय मोहन भाई जी, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। RJ24CA0765 इंडिगो कार अगर यहाँ किसी की है तो उसकी जगह चेंज करनी है, अभी कर लीजिए भाई साहब, अभी। एक बात मैं अवश्य कोट करना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय मोहन भाई जी को पर्यावरण श्री और ऐसे अनेक प्रकार के अवार्ड्स आपके कार्य विधि के कारण प्राप्त हुए हैं। बाबा का एक विशेष रथ कहो, इंस्ट्रूमेंट कहो, आपके द्वारा बहुत विशिष्ट प्रकार की सेवाएं खास एनवायरमेंट की फील्ड में हुई है।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के पुनः ओम शांति बोलेंगे, लेकिन उस विधि से जैसा यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ सारे ब्राह्मण वत्स मिलके बोला करते थे, तब ओम शांति तो नहीं होता था, लेकिन ओम की ध्वनि ही विशेष होती थी। तो हम सब अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को नीचे उस श्वास को छोड़ते हुए फिर ओम की ध्वनि करेंगे, और दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे छोड़ते हुए शांति की ध्वनि। आज के विषय के अनुरूप सबसे पहली विधि तो यही है जो अभी हमने करी, ओम शांति का श्वास के साथ उच्चारण, क्योंकि ओम शांति का अर्थ तो हम सब ब्राह्मण बच्चे जानते ही हैं, दिन में शायद अनेकों बार बोलते भी हैं, लेकिन जमा का खाता बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि हम जब भी ओम शांति बोलें उसके स्वरूप में स्थित होकर के बोलें, और उससे क्या होगा, और जब हम स्वयं ही शांति के स्वरूप में स्थित होकर के बहुत अनेक बार दिन में ओम शांति की ध्वनि उच्चारण करेंगे, एक दूसरे से मिलते हुए जाते हुए ओम शांति कहते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होगा, कौन सा जमा का खाता होगा, पहली बात तो कितने खाते हैं हमारे, कितने खाते हैं जो जमा करने योग्य हैं, एक एक करके बोलो, बाबा ने बहुत बार बोला है, एक बोले पहले, हाँ बोलो आप, ज्ञान का और समय का, बहुत अच्छा, और श्वास का, बहुत अच्छा, शक्तियों का और संकल्पों का, वेरी गुड, दुआओं का, संकल्पों के साथ साथ बाबा ने कहा है वाणी का खाता भी, क्योंकि सारे दिन भर तो अधिकतर तो वाणी में रहते हैं, तो वाणी का भी बहुत बड़ा खाता है, कर्मों का भी खाता है, और ये सब खाते तो जो बचा है ना, समय का, गुणों का, संकल्पों का, शक्तियों का, ये सारे खजाने तो है ही हैं, और इन सब को बाबा ने कहा है बढ़ाने की विधि। हम सब जानते हैं आवश्यक क्यों है इनको बढ़ाना, क्योंकि एक गायन है अंतमते सोगति का, हमारा सारा पुरुषार्थ ही इसलिए हो रहा है कि अंत समय जब प्राण तन से निकले, जब आत्मा ये शरीर छोड़े, उस समय और कोई भी स्मृति में ना हो, न व्यक्ति वस्तु वैभव, न कोई किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट न हो, जिससे सहज रीति से ही प्राण तन से निकले, और हमें ये जीवन में सौभाग्य मिला है कि हमने ब्रह्मा बाबा को, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो हम यहीं पर ही थे तो बहुत दूर आसाम में, लेकिन बाबा ने अंत समय बुला लिया, क्योंकि जैसा बाबा ने हमसे वायदा किया था वहां भेजते समय, मैंने कहा था बाबा इतनी दूर जा रहे हैं, आसाम वहाँ कोई सेंटर भी नहीं था, ये है 67 की बात, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे जाओ और बाबा तुम्हें बुला लेगा अपने समय पर, तो बाबा ने वायदा निभाया, और वो तो अभी समय के अभाव में पूरा बताने का नहीं है, आज तो जमा का खाता कैसे बढ़ाए उस पर डिस्कस करते हैं, तो बाबा ने अंत समय बुला लिया और हमें ये सौभाग्य मिला बाबा का अंत समय देखने का 17 और 18 जनवरी को, और चूंकि बाबा का जमा का खाता इतना ज्यादा था ब्रह्मा बाबा का, तो अंत समय कुछ कार्य रह गए थे, लेकिन जैसे कहा जाता है इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, और इस कारण से भले मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, लेकिन यमराज को भी उन्होंने जैसे रोक दिया, और कितने दिन तक वो रहे शैया पर ये तो भक्ति मार्ग वाले जानते होंगे, और फिर जब वो जो शुभ दिन होते हैं जब वो आए तब उन्होंने अपने देह का त्याग किया। ऐसा ही हम सब भी अगर जमा का खाता बढ़ा हुआ होगा तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। अगर हमने भी दुनिया की तरह शरीर छोड़ दिया, अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, बीमारी में या कोई और बात हुई, तो दुनिया में और हम में फर्क ही क्या हुआ। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया, तो तो वो तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन जमा का खाता बढ़ाने की कुछ विधि है। जमा का खाते तो आपने बढ़ाए, तो सबसे पहला सब जो हमारा ध्यान रहे अमृत वेले उठते ही, पहला ये है कि हम अपने तन और मन की दिनचर्या को सेट करें अमृत वेले उठते। तो उससे क्या होगा कि हमारा जमा का खाता तो होता ही है, रोज हम ज्ञान योग सेवा धारणा करते हैं रोज चारों विषयों पर, लेकिन साथ ही साथ होता क्या है कि हमारा लीकेज का भी खाता है। जमा का खाता तो है, लेकिन जमा के साथ साथ सारे दिन में हमारा लीकेज हो जाता है, कभी क्रोध हो गया, कभी ईर्ष्या आ गया, कभी घृणा हो गए, कोई बदला लेने की भावना हो गया, कोई भी निगेटिविटी का बात मन वचन कर्म संकल्प किसी में भी हुआ, बस लीकेज होगा। तो बैंक में अगर हम जमा भी करते रहे और विड्रॉ भी करते रहे और तो जमा का खाता क्या होगा। तो हम ये देखें कि जमा का खाता हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, और लीकेज वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन लीकेज अगर होता भी है तो कम से कम हो। तो लीकेज कम से कम होने की विधि क्या है जिससे ऑटोमेटिकली जमा का खाता होता रहे, तो उसकी तरफ पूरा एक तो ध्यान अटेंशन रहे और लीकेज कम जितना होगा उतना जमा का खाता ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम ब्राह्मणों की दिनचर्या जमा के खाते के अनुरूप ही है। इसीलिए ये हम एक तो देखते रहे, और उसके लिए सबसे पहली बात है अमृत वेले तन और मन की दिनचर्या। उसमें क्या है, तन की दिनचर्या तो हम सब फिक्स करते ही हैं, कोई भी भाई आज ये काम करना है ऐसा करना है माइंड में रहता है, लिख भी लेते हैं और सब हम सबको अनुभव है, इसलिए उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन हम मन की दिनचर्या फिक्स नहीं करते, मन हमारा बहुत भागता रहता है। भक्ति मार्ग में भी कहा तो है कि मन घोड़े के समान है, लेकिन केवल कहने तक ही वहां तो होता है, उसे रोकने की कुछ विधि नहीं होती। लेकिन मन की दिनचर्या को फिक्स करते समय हम तीन बातों का ध्यान खास रखें उसके अंदर। पहला है मन के विचारों की संख्या। तो नॉर्मली हमारे जो विचार होते हैं जो होते हैं, लेकिन वो लगभग ऑन एन एवरेज वैज्ञानिक भी कहते हैं 2 सेकंड में एक विचार आता है ऑन एन एवरेज। और जब हम लोग कोर्स कराते हैं मैनेजमेंट वगैरह के तो ये डिटेल बात बताते हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारा सारा खेल ही मन का है, क्योंकि मन के लिए बाबा ने भी कहा है मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी कहा है मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव, संबंध मना भव नहीं मन मना भव। तो सारा खेल ही हमारा संगम युग का पूरा मन का ही है, और मन जीते जगत जीत। तो इसीलिए मन को जीतना ये हमारी पहली प्रायोरिटी, और इसीलिए आज का विषय भी है कि निमित्त निर्माण भाव से कैसे खाता बढ़ाएं जमा का। तो इसमें मन का एक तो ये क्वांटिटी ऑफ थॉट देखते हैं, और जब ऑन एन एवरेज ये विचार होते हैं अगर 2 सेकंड में एक विचार, तो पूरे दिन भर की दिनचर्या में लगभग कितने विचार हो जाते हैं, आप सब जो मैनेजमेंट के कोर्स सुनते होंगे कराते, लेकिन मोटे तौर पर 25-30 हजार विचार मन में आते हैं। कोई बात नहीं, मन हैंडल कर तो सकता है, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसमें कि जिसे हम लौकिक भाषा में अनहोनी जैसी कह देते हैं, कोई अभी आप यहां बैठे हैं बहुत आपके कम विचार चल रहे होंगे शांति में हैं, सपोज सडनली मोबाइल आया मैसेज आया भाई आपके फलाने संबंधी का ऐसा बात हो गई है एक्सीडेंट हो गया बहुत सीरियस, तो बस विचारों की संख्या जो नॉर्मल केस में 20-25-30 हजार होती है वो बढ़ के 40-50-60 हजार और मन में स्ट्रेस पैदा होने लगे। तो एक क्वांटिटी ऑफ थॉट को हमें देखना है कि अगर मन के विचारों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो उसका दूसरा एक जो बेस्ट उपाय है वो दूसरी चीज है, ये पहला है क्वांटिटी ऑफ थॉट, दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट अगर हमारी बढ़ जाती है, विचारों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, तो हमें उसे कम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ थॉट को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जितना विचारों की संख्या बढ़ती है उतना क्वालिटी ऑफ थॉट कम हो जाती है, और जितना हम क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ाते हैं, विचारों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, क्वांटिटी ऑफ थॉट विचारों की संख्या अपने आप कम होती जाएगी। तो एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट, दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट, और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ थॉट, विचारों की दिशा। तो बचपन में हम सब ने वो एक्सपेरिमेंट सूरज वाला किया है ना, सूर्य के सामने लेंस रखते थे तो सूर्य की किरणें एक जगह कंसंट्रेट हो जाती हैं और नीचे कुछ भी चीज होता है, कागज होता है, कुछ उसे जला देती है। अब सूर्य वही है, उसी सूर्य के सामने हम लोग रहते हैं, प्लीजेंट होता है, ठीक है, लेकिन जस्ट एक लेंस रख दिया तुरंत धुआं निकलने जलने लगेगा। ऐसे ही मेडिटेशन क्या है, जो हमारे जितने विचार है उन सबको एक कंसंट्रेट कर लिया। ये तो हमारे पुराने भाई बहनों ने उदाहरण सुना होगा। तो एक तो ये तीन बातों का तन और मन की दिनचर्या, जैसे ही कोई दिन भर में कोई घटना हो, सडनली कोई विचार बढ़ने लगे, ये एकदम करें कि मेरे विचार बढ़ रहे हैं, अब मुझे क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ानी है जिससे क्वांटिटी ऑफ थॉट कम हो जाए। एक तो तन के साथ साथ मन की दिनचर्या को सेट करें। दूसरा बाबा ने कहा है खजाने जमा करने की विधि है क्या, विचार सागर मंथन। मुरली तो हम सब रोज सुनते हैं, लेकिन वो मुरली जो है वो जो ज्ञान का खजाना है वो बाबा का है। तो बाबा से हमने सुना, सुनने पर ही हमारा नहीं बन गया, सुनने के बाद अगर हमने विचार सागर मंथन किया तब वो खजाना हमारा बन जाता है। ये है आप लोगों ने अभी बताया ज्ञान का भी खजाना, तो ये ज्ञान का खजाना बढ़ाने की विधि है। मुरली सुनते तो हैं, लेकिन वो भूले नहीं, और कैसे, विचार सागर मंथन। कोई भी एक पॉइंट दो पॉइंट को ले ले, लिख ले, हम पूरी मुरली नहीं, एक या दो पॉइंट, भले वरदान हो का स्लोगन का हो या धारणा का सार हो या मुरली का सार जो शुरू में आता है, वो पॉइंट, और उस पर हम विचार सागर मंथन करें। कैसे, अब वो कई भाई बहन कहते हैं विचार सागर मंथन हमारा चलता नहीं है, तो बाबा ने उसकी सबसे अच्छी विधि क्या बताई है, सबसे सहज अच्छी विधि है, चित्रों के सामने जाकर बैठ जाओ। मानो विचार सागर मंथन हमारा नहीं चलता है, हम मानो वो कल्प वृक्ष का चित्र है, मानो उसके सामने जाकर बैठ गए, और बस कल्प वृक्ष का चित्र तो सबने देखा ही है, तो नीचे जड़ में कौन बैठे है, बाबा मामा और अनन्य रतन जो है। अपने को ये इमेजिन करें कि उन अनन्य रत्नों में मैं भी हूं, मेरा भी पिक्चर है, और बस, और कल्प वृक्ष को जैसे हम 7 डे कोर्स कराते हैं, समझाते हैं, ऐसे हम अपने से ही वर्णन करना शुरू कर दें, देखो हम सृष्टि के बीज रूप है, हमारे आधार पर ये सारा संसार खड़ा हुआ है, बाबा ने हमें कितना महान बनाया है, मैं काम देने हूँ। ये कल्प वृक्ष के लिए कायन जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आके संकल्प करता है उसका संकल्प पूरा होता है, तो मैं ये कल्प वृक्ष के बीज में हूँ। तो ये अपने को हम एक नशा चढ़ा के, और पहले ये जड़ का करे, ये जड़ में मैं हूँ तो मेरे आधार पर ही ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। फिर हम सतयुग का वर्णन करें जो कैसे, जो बाबा ने बताया है, क्योंकि सेवा में तो आप सब लोग रहे ही होंगे, कभी ना कभी कल्प वृक्ष समझाया भी होगा, तो दूसरे को जैसे समझाते हैं वैसे अपने को एक्सप्लेन करें। तो उससे क्या होगा, कुछ समय बाद अलग अलग चित्रों में हम बैठे हैं सामने, कुछ समय बाद चित्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो मन के अंदर मनन होगा, और ये ही विचार सागर मंथन की विधि है। कहीं भी होंगे, कोई चित्र नहीं होगा, लेकिन उसकी तह में हम जा सकते हैं ज्ञान की, और उससे क्या होगा कि ये जब अंदर मनन चिंतन चलेगा ये हमारा अपना खजाना बन जाएगा। तो ये ज्ञान का खजाना, फिर कहीं भी कोई परिस्थिति आई तो वो परिस्थिति जैसे ही आएगी, ब्यूटी हमारे ज्ञान की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, उसकी खासियत ये है कि जब भी हमारे सामने कोई भी परीक्षा आती है, माया का पेपर होता है, कमजोरी का वार अगर होने वाला होता है, बाबा ने एक बार बताया था अव्यक्त मुरली में कि मेरे पास सब बच्चों का टीवी है और जब भी कोई बच्चे से में कोई कमजोरी आती है, संकल्प वाणी कर्म कोई भी कमजोरी की बात होती है तो उस बच्चे का टीवी ऑन हो जाता है और मेरा ध्यान बाबा का ध्यान तुरंत उस टीवी की, ऑफ टीवी हो 10 टीवी रखे हैं सब ऑफ हैं ध्यान नहीं जाएगा, उनमें एक ऑन होगा तुरंत ध्यान चला जाएगा। तो बाबा ने कहा था जिस बच्चे के भी कमजोरी का कोई संकल्प व बात होती है उसका टीवी ऑन होता है मेरा ध्यान जाता है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उस बच्चे को सकाश देता हूँ, क्योंकि अभी वो मंशा तक ही है कमजोरी उसकी, तब उसका टीवी ऑन हो जाता है, मैं सकाश देता हूँ, शक्ति देता हूँ कि वो बच्चा वाणी और कर्म से ये विकर्म न करे। बाबा सकाश देता है, लेकिन हम सबका अनुभव है कभी भी कोई बात होती है हमारे मन में कुछ समय के लिए युद्ध चलता है, द्वंद, ये करूं ना करूं, ये तो नहीं करना चाहिए, ज्ञान की मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन पुराने संस्कार वो और जागृत होते हैं तेजी से और उनके वशीभूत अगर हो जाता है व्यक्ति तो क्या है, उसने बाबा की बात को सुना अनसुना कर दिया। बाबा ने तो टच किया, हमें आई भी बात वो, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, पुराने संस्कारों के वशीभूत हुए तो कर लेते हैं, फिर बाबा भी साक्षी हो जाता है, बाबा कहता है मैं भी क्या करूं, बच्चे अपने संस्कार के वशीभूत होके कर लेते हैं। तो इस कारण से इसमें बाबा ने कहा है कि ये विचार सागर मंथन जितना करते रहेंगे तो ब्यूटी यही है कि कभी भी बाबा अपने बच्चों की इतनी बड़ी रक्षा करता है, कोई विकर्म करने वाला होता है बच्चा, बाबा पहले टच जरूर करता है, हम सबका अनुभव है ये वो, लेकिन कभी अगर नहीं भी टच हुआ हम उसे अनसुना कर देते तो वो आदत हो जाती है। आप देखोगे जब पहले ही टच होता है और हम उस बात को कैच करके उस परिस्थिति से अपने को अलग कर ले, कोई कमजोरी की परिस्थिति है, कमजोर संकल्प आ रहे हैं, बाबा ने टच किया, अगर हमने उस टच को पकड़ के अपने को उससे अलग कर लिया तो हमारी वाणी और कर्म इंद्रियों से वो विकर्म नहीं होगा। तो ये बाबा ने जो बताया है, फिर ये आदत ही पड़ जाएगी, कोई भी परिस्थिति आई बाबा टच करेगा और 100% उसको कैच करके उस परिस्थिति से अपने को छुड़ा लेंगे जिससे वो विकर्म आगे न हो। तो एक ये बात जो बाबा ने विशेष बताई है ये ध्यान रहे। तीसरी बात, सारे दिन भर में विकर्म का खाता कब जमा, मतलब लीकेज होता है, जो अच्छे है कर्म जो जमा का खाता है वो लीकेज कब होता है, जब कई बार हम समझते हैं मैं ये कर रहा हूँ, ईगो अभिमान के वश, देह अभिमान के वश आ जाते हैं। और इसकी रेमेडी बाबा ने क्या बताई है, इसका उपाय क्या है, मैं सदा समझूं बाबा की तरह मैं करण करावन हार हूं, ये बुद्धि में रहे। बाबा भी जैसे कहते हैं ना, तो कभी हम करण हार बन जाए, भाई मैं इन शरीर के द्वारा आत्मा जो है किस प्रकार से दोनों पार्ट प्ले करती है, करण करावन हार, आत्मा करती है और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कराती है। तो हम जो भी अगर इस उसके संकल्प के साथ करेंगे मैं करावन हार हूं तो हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा, लीकेज का खाता बंद होता जाएगा। चौथी बात इसमें बाबा ने कहा है कि बाबा किस पर राजी, दुआ का खाता भी किसी ने बोला था ना, तो सबसे ज्यादा दुआ का खाता किसका जमा होता है, बाबा का विशेष गुण है, बाबा ने कहा जिन बच्चों का ये गुण होता है उनका दुआ का खाता सबसे ज्यादा बढ़ता है, कौन सा बाबा का, सच्चे दिल पर साहेब राजी, भगवान भी राजी उस पर होता है। बहुत सारे जो बच्चे सच्चे हैं, साफ है, तो सच्चे दिल पर साहब राजी, उससे क्या है हमारा दुआ का खाता। ये बड़ा सब्जेक्ट है, कितनी प्रकार के दुआओं के खाते हैं, कैसे जमा होते हैं, लेकिन नटशेल में सबका वो है कि सच्चे दिल पर साहब। इसलिए बाबा कई बार कहता है, कल भी आज की मुरली में था, गरीबों का एक रुपया और साहूकार का हजार भी बराबर हो जाता है। क्यों? गरीब भावना से करता है। भगवान बाबा ये मेरे, मुझे याद है ब्रह्मा बाबा के साथ हम लोग बैठा करते थे हिस्ट्री हॉल में, कई बार बाबा और माताएं आती थी, अपना धोती की गांठ खोली, चवन्नी, उस समय तो चवन्नी की भी वैल्यू होती थी, निकालते थे, बाबा मेरा मेरी एक ईंट लगा देना, उस समय ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, तो बस बाबा की आंखें भर आती थी, दिल भर आता था, बच्ची ये चवन्नी नहीं, तुमने महल हीरे सोने चांदी के वो कर लिए, बाबा को बांध लिया, और तुमने ये एश्योर कर लिया कि सतयुग में सोने चांदी के महल। और इसके विपरीत हमने देखा, वो भी दृश्य देखा है कि बिरला के यहाँ से पहले जीडी बिरला मेन हुआ करते थे, उसने सुना था तो वो आया था बाबा के पास, ये हमारा सुना हुआ है, और उसने लाके बाबा के सामने ब्लैंक चेक रख दिया कि बाबा मैंने सुना यहाँ साक्षात्कार होते हैं लक्ष्मी नारायण और सबके, आप बस मुझे एक साक्षात्कार करा दो ये चेक में, बस मैं बड़े प्यार से स्नेह से बिना किसी ईगो भावना के, वो भी बहुत नम्र और निर्माण था जी डी बिरला, जो सब बिरलास का फर्स्ट मेन था। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ये बाबा के हाथ में तो है नहीं, ब्रह्मा बाबा भी साक्षात्कार नहीं करा सकता, ये तो शिव बाबा के हाथ में है। और तभी भाई लोग जो सीनियर बताते हैं कि कुछ हरियाणा से माताएं गांव की आए थे और बस उधर से गुजर ही रहे थे, बाबा को देखा तो बस एक माता बिल्कुल गांव की जाट पहने वो, और वो जाके एकदम बस बाबा 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 गले लिपट गई, तो सब वो तो बिरला तो देखने लगा वो, तब बाबा उसके साथ से हिस्ट्री हॉल से बाहर निकल रहे थे मिलके, तो बस वो जब तो उसने तो देखा तो बताया सब बहनों वगैरह ने, ये ध्यान में गई है साक्षात्कार में। तो कहां गांव के साधारण से साधारण भी बिल्कुल गरीब, और तो उसने बाबा की तरफ देखा, बाबा फिर निवेदन किया बाबा मुझे भी एक बार साक्षात्कार करा दो, उसने तो सोचा ब्रह्मा बाबा ही कराता है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये बाबा के हाथ में नहीं है, ये बच्ची भी जो साक्षात्कार कर रही है ये तो शिव बाबा ही करा रहा है। तो देखो कहां, और उस वक्त यज्ञ भी बड़ी साधारण स्टेज में था, बहुत बिल्कुल बहुत परिस्थितियां विपरीत भी थी, ये 1962-63 जब हम ज्ञान में आए थे उसके बाद की बात है, और ये तब से कई ऐसे अनेक दृश्य हमने ऐसे देखे हैं, लेकिन बाबा को देखा, बाबा इतना निमित्त निर्माण निर्मल स्वभाव से बाबा हर बात को लेता था। तो एक ये है कि क्या समझे हम अपने को, मैं करण करावन हार हूँ, सच्चे दिल पर हूँ, और सच्चे दिल पर साहबराजी कहते हैं ना, सच्चे दिल का वो उदाहरण क्या, कई बार बाबा मुरली में भी बोलते थे ना, और है जो सच्चे दिल पर होगा सच्चा होगा, हम कहें मैं सच्चा हूं लेकिन पहचान क्या है उसकी सच्चे दिल की, एक तो सच तो बिठो नच, वो खुशी में नाचता रहेगा, उसकी खुशी कभी कम जास्ती ऐसे नहीं होगी, और दूसरा क्या होगा, जो सच्चा होगा ना, परिस्थितियां सबके सामने आएंगी लेकिन सच की नाव डोले डूब लेकिन डूबे नहीं, बहुत परिस्थितियां विपरीत होंगी लेकिन कभी भी वो अपने को मंझधार में महसूस नहीं करेगा वो कि मेरी नैया डूब गई और मेरे साथ ये परिस्थिति हुई। और इस कारण से क्या होगा, जब अंत समय में ना बाबा ने कहा है, बाबा ऐसी बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ है, और बाबा बंधा हुआ है उसका भाव यह, कभी ऐसी परिस्थिति आई भी तो हमें बीच में हम अधूरे हार नहीं खाएंगे। और इसके साथ साथ क्या है, बाबा ने बताया जमा का खाता बढ़ता रहे और लीकेज कम हो उसके लिए दो शक्तियां विशेष चाहिए। देखो अनेक शक्तियों का आप जानते हो, लेकिन कौन सी दो विशेष शक्तियां बताओ? सहन शक्ति, और सबसे जरूरी है परखने की शक्ति। वो क्योंकि अगर परख लेंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी लीकेज नहीं होगा, उस परिस्थिति से हम अपने को बचा लेंगे। जब हम परख नहीं पाते हैं तो हम उस परिस्थिति में फंस जाते हैं। योग के लिए थोड़ा सा रुकते हैं। तो बात हो रही थी अंतिम समय के लिए हमें जो दो शक्तियों की विशेष दो पेपर, जो अनेक पेपर आएंगे उसमें एक तो परखने, परिस्थिति को परख लें और फिर निर्णय करें, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, परखने और निर्णय करने की शक्ति। तो ये एक एक शक्ति है। और दूसरी शक्ति कौन सी आवश्यक है? दूसरी है सामना करने की शक्ति। क्योंकि परिस्थिति को और पेपर को परख भी लिया, लेकिन अगर सामना नहीं कर सके तो उस परखने का फायदा ही क्या हुआ। सफलता पूर्वक उस परिस्थिति का सामना करके उस पर विजय प्राप्त कर सकें, ब्यूटी तो इसमें है। तो इसीलिए इन दो शक्तियों पर अंतिम पेपर के लिए विशेष ध्यान दे सके। मुझे याद आता है, क्योंकि हम तो यहीं पर थे जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो हम यहीं आ गए थे दो दिन पहले। बहुत दूर आसाम में थे, लेकिन बाबा ने बुला लिया और हमने देखा जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो हम यहीं पर थे उस दिन। तो विशेष हम सबको भी जो बाबा कहते हैं ना, अभी बच्चे ब्रह्मा कुमार तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्मा कुमार कुमारी, अब ब्रह्मा बाबा के पदचिन्हों पर चल के क्या बनना है? ब्रह्मचारी बन गए, अब ब्रह्माचारी बनना है। तो इसीलिए ब्रह्मा, और हमारी सारा पुरुषार्थ 10 20 30 50 80 साल के पुरुषार्थ का भी पेपर एक बात पर ठहरा हुआ है। कौन सा? अंतिम समय पर, अंतिम क्षण पर, जिस समय हमारे प्राण तन से निकले हैं, उस समय हम बिल्कुल एकाग्र बुद्धि होके और कहीं बुद्धि न जाए। और बाबा का ये स्वरूप हमने देखा अपनी आंखों से। तो 18 जनवरी को ना बाबा ने किस प्रकार से शरीर छोड़ा, जो जो कार्य बाबा के रह गए थे वो बाबा ने उस दिन पूरे किए। क्योंकि अगर वो कार्य पूरे नहीं करते तो उधर बुद्धि चली जाती, जो अनरिजॉल्व्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है। तो बाबा ने यशु दादी को पहले बोला सारे पत्र लिखवा लो, हमें भी उस अंतिम पेपर के लिए तैयार होना है। वो इस बात का रिजल्ट होगा कि हमने कितना लीकेज को बंद किया, कितना जमा को बढ़ाया। हर चीज का रिजल्ट होती है ना, उसका मापा, मानो बुखार है, नापते हैं थर्मामीटर से तो पता चलता है बुखार है या नहीं। तब ये ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर नापते हैं भाई लो है हाई है या नॉर्मल है। ऐसे ही हम अंतिम समय के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसके लिए ये बाबा की दिनचर्या। क्योंकि बाबा ने जब शरीर छोड़ा ना, एक तो बाबा ने यशु दादी को बोला जो भी पत्र के उत्तर बाबा ने नहीं लिखे वो आज लिखवा लो। बाबा को आभास हो गया था कि आज बाबा का अंतिम दिन है, तभी बाबा ने वो जितने बचे हुए चार काम मेरे ध्यान में आए और भी होंगे तो वो बाबा ने पूरे किए, तो सारे पत्र के जवाब लिखवा लिए। दूसरी बात, जो मधुबन का ये जो नक्की लेक के पास बिल्डिंग है वो बाबा ने पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो बाबा ने क्लियर करी, बच्चे ले लो सेवा साधन बनाना है। एक बाबा ने रोज रात को, यहाँ रात्रि क्लास होती है 9 बजे 9:15, जैसे यहाँ पर आज 9:15 थी, लेकिन मैं तो लेट पहुंचा। और उस दिन बाबा ने 6:30 7 ही अनाउंस करवाया कि आज बाबा क्लास जल्दी करेगा 7 बजे। बाबा को आभास हो गया था कि अगर नॉर्मल केस तक के लिए रुके रहा तब तक तो शरीर रहेगा नहीं, तो इस कारण से बाबा ने क्लास 1.5-2 घंटा प्रीपोन्ड कराई और क्लास लेकर के फिर उसके बाद बाबा गए बाहर निकल के बाबा ने ये शब्द कहे हिस्ट्री हॉल के बाहर कि अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने नहीं कहे, आभास था बाबा को, मैं इसीलिए बाबा पूर्ण बन गया क्योंकि आभास हो गया था और उसके लिए बाबा ने बची हुई भी तैयारी पूरी कर ली। और उसके बाद जब बाबा वहां से निकल के कमरे में गए और बाबा ने दादी के हाथ में हाथ देते हुए नैन मुलाकात करते हुए शरीर जब त्याग किया, तो बाबा उस समय उस दिन की हमारा एक बात खास बताना चाहूंगा कि बाबा से हम चार पांच बार मिले 18 जनवरी को, चार पांच क्या बल्कि छह सात बार, दो दिन में 17 और 18 जनवरी 1969 को। लेकिन हर बार हमें बस सोचते थे हम ये प्रश्न पूछेंगे ये बात, लेकिन बाबा ने मन के भाव जानकर उस बात को बस बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यही स्थिति है, मन जीते जगत जीत। बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है तुरंत बाबा पढ़ के उसका समाधान दे देता था। तो ये स्थिति हम बच्चों को बनानी है, क्योंकि अगर हम भी मन जीते नहीं बने तो जगत जीते नहीं बन सकते, लक्ष्मी नारायण विष्णु के समान नहीं बन सकते। तो उसका प्रमाण यही है, मैंने अपना मन कितना जीता उसका प्रमाण यह है कि जो आत्मा हमारे सम्मुख आएगी उसके मन के विचारों को पढ़ के हम उसके प्रश्नों का समाधान कर सकें, इस स्थिति में पहुंचे। तो इस रीति से ये जो स्थिति है इसमें अपने को यही देखते चलना है कि मेरे खजानों का जो लीकेज है वो लीकेज बंद हो जाए। और अंतिम जो योग की स्थिति बताई गई है स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा योग की, मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत सब में समान। और अंतिम समय बाबा ने भी जब शरीर छोड़ा ना, तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद बाबा ने जब 13 दिन भोग लगते थे, आप वो पहली किताब भी पढ़ना जो पहली अव्यक्त वाणी 18 जनवरी के 69 के बाद की निकली हुई है, उसमें 13 दिन के भोग का भी संदेश है। तो बाबा को से बच्चों ने पूछा बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, तो बाबा ने बताया बच्चे अंत में बहुत युद्ध चल रही थी, एक तरफ कर्म भोग की युद्ध मतलब वो कर्म भोग अपनी तरफ खींच रहा था, शरीर का कर्म भोग जो भी बचा हुआ था, बहुत दर्द था हार्ट में, बहुत पेन था, लेकिन दूसरी तरफ योग बल जो कमाई की है वो योग बल भी जैसे खींच रहा था। और शुरू में शरीर का कर्म भोग बहुत था तो छटपटाहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे योग बल तेज होता गया कर्म भोग कम होता गया और अंत में आत्मा मक्खन से बाल की तरह निकल करके जैसे बाबा की गोद में चली गई। तो अंत में जितना भी हमारा रहा हुआ खाता होगा उसका हिसाब किताब चुकतु वही अंत में शरीर के द्वारा होगा, ये अंतिम पेपर है शरीर का। और उसमें अगर हम इस पेपर से अगर हार गए, बहुत दर्द है, दर्द की तरफ बुद्धि हुई और तब प्राण तन से निकले, तो फिर तो आप समझ ही सकते हो क्या होगा। लेकिन उसमें यही कि हमारा कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल वो विजय प्राप्त करे, कर्म भोग को हम बहुत हमारे ऊपर हावी ना होने दे, और वो तभी होगा जब हमारा योग बल की कमाई हमारी इकट्ठी हुई होगी और लीकेज के खाते को कम किया हुआ होगा। जितना मिनिमम होगा उतना खजाना ज्यादा होगा और उतना उस हिसाब से आत्मा अंतमते सो गति को प्राप्त होगी। और सारा आगे आने वाले जन्मों का हिसाब उसी एक क्षण पर है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, प्राइवेट में भी होता होगा शायद, जो व्यक्ति की लास्ट पे ड्रॉन होती है LPC है लास्ट पे ड्रॉन, तो वो उसके आधार पर ही उसका आगे जन्मों का सारा प्रोविडेंट फंड और पेंशन और सब कुछ बचे हुए जन्म का उसी पर कैलकुलेट होता है। ऐसे ही हमारा ये अंतिम क्षण के समय जब हमने शरीर छोड़ा आत्मा ने, तो उसके ऊपर हमारा सारा का सारा ये आधार होगा, इसके ऊपर सतयुग के सतयुग त्रेता के जन्मों का आधार, द्वापर के, यहाँ तक कि कलयुग के अंतिम हम इस समय भी इतने दुनिया की भेंट में बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसका आधार हमारा यही है कि हमने अंत में जब शरीर छोड़ा होगा तो उस समय हमारी भी बहुत उच्च स्थिति होगी, और बाबा का ये हमने अंतिम में ये देखा। और लास्ट में जब बाबा शरीर छोड़ के चले गए और कैसे हम दूसरे के मन को सही रीति परख रहे हैं, पता कैसे चलेगा? कोई भी संकल्प लेके आया, अंत में ये समय नहीं होगा कि वो वर्णन करे कि मेरे अंदर ये है, आप मेरे ये इसको दूर करो, ये कमी को दूर करो, कमजोरी को नहीं, वो आएगा। हम अपने मन के संकल्पों पर चूंकि विजय होगी पूरी, तो उसके संकल्पों को पढ़ करके और उसको जैसे कि पूरा संकल्प को सिद्धि का अनुभव वो अनुभव करेगा, और साथ साथ क्या होगा उसका प्रमाण यह होगा, बाबा ने कहा कि रोती हुई आत्मा आए, आपका ज्वालामुखी रूप देख करके उसका रूप परिवर्तन हो जाए, जैसे अग्नि में कोई चीज डालो रूप परिवर्तन हो जाता है ना, वो हंसता हुआ चला जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो रूप परिवर्तन तभी हो पाएगा उसका जबकि हम अंत में उसको इस स्थिति से पार कर सकेंगे। तो हमें उस अंतिम पेपरों को ध्यान में रखते हुए अब अपने को तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। पहले तो आपसे माफी मांगते हैं कि आने में थोड़ा लेट हुई। बहन जी ने जैसे बताया ना कि कल से कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, तो बड़ी मुश्किल से वो आ सके, तो लेट हुई, इसमें वेरी सॉरी। लेकिन आप सबके चेहरे, खुशनुमा चेहरे देख करके हमारी भी अपनी सारी थकान दूर हो गई, और इसीलिए आप सबको आपके खुशनुमा चेहरे की और इस भट्टी की बहुत 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 हार्दिक बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। ओम शांति।
बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है आदरणीय मोहन भाई जी का, जो आपने इतना व्यस्त होते हुए भी इतना समय सबके लिए दिया है। अभी हम बाबा की याद में 2 मिनट बैठ के उठेंगे। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट।